ओम शांति। आज जो है हम अमृत वेला के ऊपर मैं और कमलेश भाई दोनों शेयर करेंगे। वैसे तो सभी आप अभी कर आ ही रहे हैं और आप सबको मालूम भी है कि अमृत वेला क्या है। तो अमृत वेला जैसे कि उसमें जो हम अगर अक्षर को देखें तो उसका मतलब अमृत वेला जैसे कि अमृत पीने की वेला, और उसमें एक एक अक्षर के ऊपर हम लोग कुछ अपनी बातें रखेंगे जिसमें कि आप लोगों को भी शामिल होना है और आप लोग भी उन चीजों को सब जानते हैं, तो इसलिए हमारा और आप लोगों का सबका साथ, उसके साथ ही हम पॉइंट्स भी शेयर करेंगे। तो जैसे कि अमृत वेला मीन्स बाबा ने जो है ये हम ब्राह्मणों के लिए ये समय बाबा ने दिया है विशेष, और इसमें जो है हमें करने के लिए सबसे पहले तो बाबा के ऊपर निश्चय चाहिए कि ये अमृत वेला जो जिसने हमें टाइम दिया है और वो जो हमें किस तरह से मतलब हमसे मिलने के लिए आता है और वो जो टाइम है वो कौन सा है। उसमें जो है बाबा ने तो हमें 2 बजे से 5 बजे तक, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 3:30 बजे, कोई 4 बजे, तो इस तरह से जो जिसकी कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से, लेकिन बाबा जो है भरपूर सबको करता है। तो इसलिए जो ये अमृत पीने की वेला है, जो बाबा से सर्व शक्तियों को प्राप्त करने की वेला है, सर्व गुणों को अपने में भरने की वेला है, तो इस वेला का जो महत्व हर ब्राह्मण आत्मा जानती है और उसको पूरा करती भी है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसे होते हैं कि मतलब कि हम जानते हुए सब कुछ करना भी चाहते हैं तो भी कुछ ना कुछ माया का रूप कहें तो वो जरूर बीच में कहीं ना कहीं विघ्न रूप बनता है। लेकिन जब बाबा हमारा साथी है, सर्वशक्तिवान है, तो बाबा ने हमें सारे रास्ते बताए हैं कि आपको क्या करना है माया से लड़ने के लिए। और सुबह का जो समय है वो सबसे पहले जब हम बाबा से मिलन मनाते हैं तो उसमें आपको अपने को तैयार करना पड़ता है। दुनिया में भी हम जाते हैं किसी से मिलन मनाने के लिए या वैसे भी मिलने जाते हैं तो क्या होता है, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं या ऐसे ही चले जाते हैं? अपने को पूरा तैयार करेंगे, अपना ड्रेस अप करेंगे, अपना मेकअप करेंगे, तो सब तरह की तैयारी आप जो भी कहीं जाते हैं तो करते, और फिर ये भी देखा जाता है कि आप किससे मिलने जा रहे हैं, उसके हिसाब से भी आप तैयार होते हैं कि मान लो कोई बड़े आदमी को मिलने जा रहे हैं, बड़े किसी मिनिस्टर को, बड़े पद वाले को मिलने जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका सेटअप करेंगे, गेटअप करेंगे। और ऐसे है कि फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं या चलते फिरते कोई मिल रहा है, तो सबका मिलने का जो तरीका है, किसके साथ कैसा मिलन मनाना है वो सबको मालूम है। और यहाँ किसके साथ मिलन मनाना होता है दिखता नहीं है, लेकिन वो दिखता सब है। तो क्या करना है कि वो देख, हमको ऐसा लगता है वो दिखता नहीं है लेकिन वो हमारी हर एक्टिविटीज को देखता है, और वो शुरू होती है सुबह से। लेकिन जो सुबह की तैयारी है वो आपको एक दिन पहले से ही करनी होती है। अब आपको कहीं जाना है सुबह तो आप रात को ही तैयार करेंगे ना सब कुछ, तो इसी तरह बाबा ने जो है हमें सुबह मिलन मनाने के लिए कुछ शिक्षाएं दी हैं, अपने को कैसे तैयार करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, वो सब चीजें हैं। तो जैसे कि अमृत वेला में आपने देखा कि ए आता है, एम आता है, आर आता है, आई टी वी ई एल ए, तो इसमें जो है जो फर्स्ट अक्षर है ए, तो उसमें जो है सबसे पहले कमलेश भाई आप बोलेंगे ना इसे, तो अभी फर्स्ट जो है कमलेश भाई शेयर करेंगे, उसके बाद एक एक अक्षर के ऊपर जो भी हमारे पॉइंट्स निकलेंगे वो फिर जैसे भी। कमलेश भाई
ओम शांति। जीवन को सुखद बनाने वाली यह अमृत तुल्य वेला, जो सीरियल हमने एक के बाद एक के बाद एक एपिसोड देखे, लगभग पूरा हो चुका था और फिर जो आज्ञा मिली कि अभी इसको 16 सूत्री प्रोग्राम बनाना है, तो दीदी ने बहुत अच्छा डेकोरेट किया है और आज हम सब आप सभी मिलकर के इस 16 सूत्री प्रोग्राम को भी पूरा करेंगे। तो अमृत वेला का अ जो है, तो पहला अ है आज्ञा, ईश्वरीय आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन करना कि कौन हमें आज्ञा दे रहा है, जिसको हम श्रीमद भी कह सकते हैं, कि इस श्रीमद का पालन क्या है, अनिवार्य है। अगर ये नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में जो उन्नति है, वर्तमान हो या भविष्य हो, वो जीवन हमें सुख स्वरूप जीना है, तो ये अमृत वेला क्या है, अनिवार्य है। तो इस अमृत वेला में बाबा ने कहा कि आप आज्ञा का पालन करते तो हो, लेकिन आधा करते हो। उठकर तो बैठ जाते हो, लेकिन आगे क्या करना है वो रह ही जाता है। तो फिर बाबा ने कहा कि अगला उदाहरण बाबा ने दिया कि नेमिनाथ, जैसे कि नेमिनाथ है उसकी भी पूजा होती है, लेकिन जो मुख्य देवस्थान होते हैं, जो जिसको जागरूक देवस्थान कहेंगे या इष्ट देव कुल देवता कहा जाता है, उनकी कैसे विधि पूर्वक सुबह से लेकर शाम तक कैसे उसको जड़ मूर्ति को जगाया जाता है, खिलाया जाता है, क्या क्या उसके साथ डेकोरेशन होता है। तो बाबा ने कहा देखो आपको भी वो श्रीमत मिली हुई है, आपको भी वो आज्ञा मिली हुई है कि सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है। तो ये जो 16 सूत्र में पहला जो था कि आज्ञा, तो अभी अगला दीदी बताएंगे
इसमें। फिर अ से जो है, हमने ऐसे तो बाबा की अमृत वेले की जो शिक्षाएं हैं उसको भी ले सकते हैं, और उसमें जो बाबा सबसे पहले कहते हैं कि आपको, तो इसमें बाबा जो शिक्षा देते हैं कि सबसे पहले आपको जो है अपने को आत्मा समझकर ही मुझसे मिलन बनाना है। और आत्मा समझने के लिए ऐसा नहीं है आप सुबह उठेंगे और बैठेंगे और अपने को आत्मा बोलेंगे और आप उस स्वरूप में टिक जाएंगे, तो उसके लिए आपको बाबा कहते हैं कि पूरा एक आपको इसके लिए अभ्यास चाहिए। और ये अभ्यास जब आप सुबह करते हैं तो अशरीरी बनने का अभ्यास, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास जब आप करते हैं तो फिर पूरे दिन आपको इसकी जो है प्रैक्टिस रहती है। और इसमें जो है बाबा कहते हैं कि जैसे आप जब अमृत वेला हम बाबा से मिलन मनाते हैं तो फर्स्ट अपने स्वरूप में टिकते हैं और फिर बाबा को जो है उसी स्वरूप में भिन्न भिन्न रूपों से याद करते हैं। तो सबसे पहले जो है अपने को अशरीरी बनने का अभ्यास हम इस वेला जो समय है इसमें हम करते हैं।
अमृत वेला दूसरा है एम, एम से मर्यादा, मर्यादा, मर्यादा में रहेंगे तो माया दूर से ही भाग जाएंगे। तो इस मर्यादा के लिए एक ही फेमस उदाहरण है जो बाबा भी देते हैं, कौन सा, सीता का, कि क्या है, हम सब सीताएं हैं, राम तो एक ही है और हम सब सीताएं हैं। तो बाबा ने कहा है कि मर्यादा में रहो, अगर मर्यादा में रहेंगे, अगर मर्यादा में रहेंगे तो क्या नहीं होगा, रावण चुरा के नहीं ले जाएगा इस आत्मा रूपी सीता को। तो रावण जब सीता को चुराने आया था तो कैसे आया था, कौन से रूप में आया था, तो बिल्कुल उसी तरह अगर अमृत वेला शक्तिशाली है, उसमें हमारे अंदर वो मर्यादा की पॉइंट भरी हुई है, तो कोई भी ब्राह्मणों के द्वारा, सेवा साथियों के द्वारा जो भी विघ्न आएंगे उसमें हम पास हो जाएंगे, अगर मर्यादा में रहेंगे तो। मर्यादा माना भी श्रीमत ही कह सकते हैं कि कौन कौन सी मर्यादाएं हमें बाबा ने दी है सुबह से लेकर शाम तक। और फिर मर्यादा में बाबा ने अगला जो उदाहरण दिया है कि जैसे कि ट्रेन, ट्रेन पर पटरी को खड़ा कर दो तो अपने आप क्या होना है, हाँ ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर दो तो वो अपने आप चलेगी। तो ये समय है अपने आप को पटरी पर लाने का। तो बाबा ने कहा कि आप अपने आप को इस पटरी पर रखो तो ट्रेन आपकी पहुंच जाएंगी। तो मर्यादा में रहना, ये बाबा ने बताया यहाँ पर। तो कौन कौन सी मर्यादाएं हैं? छोटी छोटी मर्यादाएं हैं कि जिसके कारण हम सेफ रह जाते हैं। जनरल भी बता सकते हो दिन भर के। देखिए अगर हम उन मर्यादाओं के अंदर रहेंगे तभी तो अमृत वेला पावरफुल होगा। हमें शक्तिशाली अमृत वेला के लिए 16 सूत्र बनाने हैं। अमृत वेला शक्तिशाली हो इसके लिए कौन सी मर्यादा है कि सोने से पूर्व की जो मर्यादाएं हैं, अगर उन मर्यादाओं का हम पालन करेंगे, बेड पर बैठने के बाद मोबाइल को नहीं देखेंगे तो हो गया ना, हम अमृत वेला टाइम पर उठ सकेंगे।
तो इसमें जो है बाबा कहते हैं कि मुझसे मिलन बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जैसे कि कोई ना कोई संबंध से बाबा को याद करना है। मिलन आप बाबा से जब करेंगे, चाहे तो उसको आप बाप के रूप में करें, चाहे टीचर के रूप में, चाहे सतगुरु के रूप में करें, और जो जिस संबंध की आपको कमी लगती है तो बाबा कहते हैं कि आप उस रूप में मुझे याद करो। तो जब हम बाबा को किसी ना किसी संबंध से याद करते हैं तो वो एक नेचुरली होता है, हमें उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है और वो नेचुरल याद रहेगा। तो उसके लिए हमको मर्यादाएं हैं या श्रीमद है या बाबा ने जो भी हमें जो लकीरें बाबा ने बनाई है मर्यादाओं की, उसमें हम ऑटोमेटिकली चल सकते हैं, उसके लिए हमें मेहनत नहीं लगेगा। और बाबा कहते हैं कि मुझसे मिलन मनाने के लिए आपको जो है अपने को ऐसा पूरा दिन अटेंशन रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही बाबा से बस मिलन मना लें और उसके बाद पूरा दिन आप फ्री है। तो ये आपको पल पल बाबा के साथ अपने को कैसे मिलन बनाना है उसके लिए आप सुबह के टाइम से ही अपने को तैयार करते हैं।
अगला है आर, रमणीकता। तो रमणीकता चाहिए, तो बाबा ने कहा कि याद में रमणीकता हो। तो याद में रमणीकता कब आएगी? जब ज्ञान में रमणीकता हो। हमें अमृत वेला अगर रमणीकता से करना है, रमणीकता को हम कह सकते हैं कि नवीनता हो उसमें, रोज रोज एक ही बात ना हो तो उसमें नवीनता हो। तो यह रमणीकता कब आएगी? जब ज्ञान में नवीनता हो कि जो हम यहाँ करते ही रहते हैं नवीनता। तो जैसे ही हम इधर नवीनता लाएंगे तो योग उसमें इंक्लूड है, और जब हम योग के ऑफिशियल टाइम पे बैठेंगे तो जरूर उसमें रमणीकता का अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा कि जैसे कोई चीज हम बनाते हैं, कोई पसंदीदा चीज है हमारी, और वो अगर हमें रोज ही दी जाए, सिर्फ रोज ही नहीं तो तीनों टाइम वही खिलाया जाए। अगर आपको इडली पसंद है, सुबह इडली, दोपहर को इडली और शाम को भी इडली खिलाई जाएंगी तो क्या होगा? लेकिन उब जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि नवीनता, भले इडली हो लेकिन चटनी तो अलग अलग बनाएंगे, उसको छोक लगाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह बाबा ने कहा कि ये ज्ञान की पॉइंट में रमणीकता होंगी, वो पॉइंट अगर यह बुद्धि में होगे तो योग भी उतनी रमणीकता से लगेगा। कभी बाबा ने कहा कि लाइट हाउस बन जाओ, सिर्फ लाइट हाउस का अभ्यास करो, कभी माइट हाउस का अभ्यास करो। तो मानो अगर हमने किसी की बनाई हुई कमेंट्री सुनकर योग कर रहे हैं तो इतना मजा नहीं आता है। हाँ पहली बार आएगा, दूसरी बार आएगा, फिर धीरे धीरे वो जो शब्द है उसको अनुभूति करने के लिए खुद का भी एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए। सिर्फ उस शब्दों से आधार पर हम रमणीकता अनुभव नहीं कर सकते। ये अलंकारिक भाषा, मधुर वाणी, ये कोई योग का साधन नहीं है। रमणीकता कब आएगी? जब हमारे अंदर से वो पूरा विजुअलाइजेशन क्लियर हो। अब क्या है लाइट हाउस, क्या है माइट हाउस? जैसे हम बड़ों के भी क्लासेस सुनते हैं, पूर्वजों के भी सुनते हैं, एक बार नागेश भाई जी ने बताया था कि जगदीश भाई हिस्ट्री हॉल में आए और माइक लगाया गया और 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, जगदीश भाई जी एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रहे थे। कौन सा शब्द? कि मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं हल्की हूँ। तो सामने बैठने वालों को उन्होंने उस शब्दों से ही नहीं तो अपने प्रैक्टिकल अनुभवों की अथॉरिटी के आधार से लाइट और माइट बना ही दिया। तो रमणीकता, कभी क्या करना है, झाड़ के नीचे अपने आप को अनुभव करना है, जड़ों के पास, पूर्वजों के पास। तो कभी बिल्कुल नया पत्ता बन जाओ, बिल्कुल ऊपर चले जाओ, टॉप पर, और वहां से क्या करो, देखो उस सूरज को। वो जो ऊपर का जो उसका पहला पत्ता होता है उसको आकर्षण होता है सूरज का, और जो झाड़ का नीचे का जो रूट होता है, जो जड़े होती है, उसको आकर्षण होता है उस धरती के अंदर जो पानी है, स्नेह का जल है। तो ये रमणीकता लानी है हमें, कि हर रोज नवीनता हो और हमें देखकर दूसरे भी रमणीक बन जाए, ना कि गंभीर बन जाए।
तो हम जब रमणीकता से जब हम अपने अपने को रखते हैं तो हम खुशी में रहते हैं, और खुशी के साथ ही हम जब बाबा के साथ रू रिहान करते हैं, और बाबा ने हमें बताया है कि रू रिहान बच्चे कैसे करते हैं, और रू रिहान में हमको कुछ ऐसा फॉर्मेलिटीज जैसा नहीं होता है। बाबा के साथ आप कैसे भी बातें कर सकते हैं, उस मतलब आपके जो मन में है आप बाबा के साथ कभी भी शेयर, जैसे कुछ भी आपके साथ ऐसा आप शेयर कर सकते हैं, और उस रूहानियत का अनुभव आप औरों को भी करा सकते हैं कि आप किससे मिलन मना के आए हैं या किससे आपका संबंध है। तो जब आप पूरे दिन में उसी रमणीकता के साथ और उसी रूहानियत के साथ, क्योंकि आपको नशा रहता है कि कैसे हमने सुबह जो अच्छे से अगर हमने बाबा से रू रिहान किया है, बाबा से मिलन मनाया है, तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारे पूरे दिन में रहता है, और जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं तो उससे क्या रहता है, वो सामने वाले आत्माओं को भी आप खुशी का अनुभव करा सकते हैं। और रू रिहान के साथ साथ बाबा ने जो समय कहते हैं कि ये रियलाइज करने का भी समय है, रिसर्च करने का भी समय है। तो रियलाइजेशन क्या करना है, मतलब हर बाबा के जो पॉइंट्स है या बाबा ने जो भी हमें इतना ज्ञान अथाह खजाना दिया है, एक एक गुण बाबा ने हमें बताया है, तो उसको जो है ये टाइम पर हम रियलाइज कर सकते हैं। और जब हम उसको अपने अंदर भरपूर करेंगे तो वही जब हम सामने किसी के समक्ष होते हैं तो हम उसको उसका भी अनुभव करा सकते हैं। तो इसलिए बाबा के साथ रू रिहान करना, रिसर्च करना, और उसके साथ अपने को जब आप कुछ भी रियलाइज करते हैं तो वो हमेशा के लिए सदा के लिए रहता है। तो वो जो सुबह आपने जो वो फीलिंग की है, अनुभव किया है, वो फिर आप पूरे दिन में उसी अनुभव के साथ दूसरों को भी खुश कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। किसी के साथ कोई विघ्न आता है, अगर आप में वो पावर है आप, तो वो आप मिलकर दूर कर सकते हैं। रू रिहान यही की बाबा क्लास है आज, आप आ जाना, जो है आप बोल देना। बहुत सारी आपके मन की जो बातें होती है वो बाबा से आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन सुबह का विशेष समय रहता है और बहुत सारी चीजें होती है मन में, सुबह के टाइम फ्रेश होता है तो आती है ताजा ताजा, तो फिर बाबा भी वैसे ही बातें करते हैं। बाबा का मूड होता है, हमारा अच्छा होता है।
और अगर हम बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं तो बाबा भी समय पर मदद कर ही देता है। तो अभी है अमृत वेला का आय, आय में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस, क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो अगर हमारे सामने है तो उतना महत्व, उतना वैल्यू हम उसको दे सकेंगे। तो अमृत वेला, कि जैसे कोई त्योहार होता है, हर त्योहार का अपना अपना महत्व होता है, हर त्योहार का अपना अपना एक महत्व होता है, हाँ जैसे हाँ वो साल में एक बार आता है, देखो वो साल में एक बार आता है। और अमृत वेला कब आता है? हाँ रोज ही आता है। देखो कल्प में संगम युग इतना छोटा, बहुत कम है वैसे देखा जाए तो, ये घड़िया जो जिसका महत्व को हम हल्का कर रहे हैं कि अमृत वेला तो रोज ही है। बाबा ने कहा है कि अमृत वेला जो है हर घड़ी आपका अमृत वेला है, लेकिन उसमें भी 24 घंटों में वही समय क्यों चुना गया है कि वहां पर रात्रि समाप्त तो हो रही है, दिन आ रहा है स्थूल में भी, फिर उस वायुमंडल का इम्पोर्टेंस हमारे सामने हो कि उस समय कोई विकारी वातावरण नहीं होता है। साइंस भी कहता है कि उस समय ऑक्सीजन की मात्रा भी जो है उस समय अगर हम जगते हैं तो अच्छी होती है। जैसे कि हम थे कि त्योहार पर, त्योहार जैसे कि दशहरा है, दशहरे के समय किन किन बातों का महत्व होता है? हर बात में महत्व होता है कि फूल भी वहां जब पूजा के लिए यूज करने है या डेकोरेशन करना है तो कौन सा फूल यूज करेंगे? गेंदे का फूल यूज करेंगे। जैसे महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि में भी कौन सा महत्व है, उस समय कौन सा फूल चाहिए, कौन सा फूल चढ़ाना है ना? अक्र का फूल। तो हर त्योहार में हर बात का एक अलग अलग महत्व है। तो अमृत वेले भी हमें कौन सा फूल बनना है? ऐसा फूल बनना है कि कभी अप्रैल फूल ना बने हम जीवन में। माया ही क्या बन जाए, अप्रैल फूल बन जाए। तो महत्व, ये जो अमृत वेला का जो महत्व है इसकी लिस्ट हमारे सामने होंगी तो हम उसको प्रॉपर उतना टाइम दे सकेंगे और उतना केयरफुली हम उसको कर सकेंगे और हमारा जो जीवन है वो जरूर सुखद बन जाएगा, वर्तमान भी और भविष्य भी।
फिर आई से जो है इनोवेटिव आइडियाज, और बाबा कहते हैं कि इस समय जो है इंस्पिरेशंस, बाबा भी हमें नई नई प्रेरणाएं देता है और हम अपने लिए भी जो है नए नए अपने प्लान्स बनाते हैं, चाहे अपने पुरुषार्थ को लेकर, चाहे सेवा के हिसाब से, या आपके लाइफ में कुछ भी कुछ विघन है या किसी परिवार के लिए, तो ये टाइम पे आप उस तरह की कुछ प्लानिंग करते हैं। तो जब बाबा उस समय हमें सहयोग देता है और हमारे को एक नई प्रेरणाएं भी हम इसमें कैच कर सकते हैं, तो लेकिन बाबा कहता है उसके लिए अगर आपको जब आप मुझसे मिलन बनाते हो तो उस समय आपकी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर आपकी बुद्धि होनी चाहिए कि तभी बाबा जो है प्रेरणाएं जो आपको दे रहे हैं तो आप उसको, जो बाबा टचिंग कराते हैं तो आप उसको जो है कैच कर सके। और उसके लिए है जो कि आपको अपने को जैसे कि कुछ भी चीजों में अपने को बांध के नहीं रखना है। अगर हम हमारी बुद्धि चारों ओर से बंधी हुई है किसी ना किसी रूप में, चाहे संबंध है या कुछ भी पदार्थ है, या बाबा कहते हैं कि आपको बंधन मुक्त रह के, मतलब आपकी बुद्धि जो है बिल्कुल फ्री रहे और आप उसको कैच कर सके जो कि बाबा आपको टच कराना चाहता है, तो ये वो टाइम है। आप इसमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए या विश्व की आत्माओं के लिए आप कुछ भी बाबा से प्रेरणा लेके उनको सहयोग दे सकते हैं।
अगला है टी, टी से टाइम टेबल। देखो हम शरीर का तो मतलब फिजिकली देखा जाए तो सब टाइम टेबल होता है, सुबह चाय पीनी है, नाश्ता करना है, मुरली क्लास जाना है, ये जो स्थूल जो दिनचर्या है वो तो है ही। हाँ फीस नहीं, ये टाइम टेबल जैसे होता है इन जनरल वो
नहीं, जिसको नींद फील होती है तो वो चाय पीता है सबसे पहले ना नहीं ऐसा तो नहीं है।
तो जैसे ये टाइम टेबल है नेचुरली हमारा बना हुआ है, उस अनुसार हम चलते हैं। आज गुरुवार है तो कौन सा ड्रेस पहनना है, क्या है, ये सब प्लानिंग होती है सूक्ष्म में। तो देखो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है बोर्ड पे, लेकिन ये अलिखित हमारी क्या है, एक टाइम टेबल बना हुआ है। तो बाबा ने कहा है कि अगर आप अमृत वेले अपने मन बुद्धि का टाइम टेबल सेट करेंगे तो दिन भर नहीं तो आप कभी अपसेट होंगे ही नहीं। अगर टाइम टेबल आपका सेट है तो आप अपसेट होंगे ही नहीं, मार्जिन ही नहीं, कोई आपको अपसेट कर ही नहीं सकता। तो ये अभी दो टाइम टेबल हमको बनाने पड़ेंगे, वो तो जैसे है वैसे मन और बुद्धि का। तो बाबा ने कहा कि वीआईपी जो है दुनिया में, आईपीज है वीआईपीज है, तो उनका जैसे मिनट मिनट प्रोग्राम होता है, तो आप भी अपना प्रोग्राम बनाओ कि कौन से समय कौन सा स्वमान लेना है। बाबा ने बहुत मुरलियों में अलग अलग बताया हुआ है, जब आप ऑफिस में बैठेंगे हाथ में अगर पेन है कलम है तो क्या बन जाओ, कमल समान पवित्र स्थिति में आप उस पर उस कमल आसन पर बैठकर स्थित होकर वो कार्य करो। माना ये अलग अलग जो स्वमान बाबा ने दिए हैं हर टाइम के लिए, हर कार्य के लिए, तो उसके साथ हमें क्या करना है, उस स्थूल कार्य के साथ इस सूक्ष्म टाइम टेबल को भी जोड़ देना है। तो बाबा ने कहा कि आप हो कौन, वो जो दुनिया वाले है आईपीज वीआईपीज, आपके आगे कितने भी वी 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 जोड़ा जाए उतना भी बाबा ने कहा कम है, आप वी वी आई पी हो। आपके जो टाइम टेबल है इतना एक्यूरेट इतना सटीक होना चाहिए कि जो कहा माया आने का और अपसेट कराने का उसको मार्जिन ही ना मिले। माइक हाथ में है तो समान होना चाहिए कि माइट, ये जैसे ये तार जुड़ी हुई है इसको हम डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, सुनने वालों को डिस्टर्ब होगा। अगर ये तार उधर जुड़ी हुई है कनेक्शन अगर ठीक है तो फिर यहाँ कोई मिस्टेक हो नहीं सकती। अभी मैंने सामान लिया हुआ है कि मैं एक साउंड बॉक्स हूँ, यहाँ से बस आवाज आ रही है, बोलने वाला शुभा बोल
रहा। टी से जो है मैंने लिया है कि जो ये समय है इस समय बाबा कहते हैं कि मैं आपको तिलक ताज और तख्त देता हूँ, तो आप सुबह इस समय पर जब हम बाबा ने जो भी हमें तिलक मतलब क्या है कि समान है डिफरेंट, आपने जो बाबा ने हमें टाइटल्स दिए है उनका हमको तिलक लगाना है। जैसे बाबा के कौन कौन से टाइटल्स है, बाबा के टाइटल्स बाबा के टाइटल्स है जो बाबा ने अपने बच्चों को दिए है, तो हर बच्चे को अपने अपने टाइटल बताने हैं। नहीं, बाबा ने ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया है कि ये सुबह बोलना है या शाम को, बाबा के जो टाइटल्स है वो अपने आप में ही बहुत ही वैल्यूबल है और उन वैल्यूबल टाइटल से रत्नों से हमको हमेशा सजा के रखना है। तो जैसे कि बाबा कहते हैं बच्चे सदा आपको जो है विजय का तिलक लगा रहे, आप जो है त्रिकालदर्शी हो त्रिलोकी नाथ हो, तो इस तरह के जो टाइटल्स है आप, नहीं ऐसा नहीं है, टाइटल्स में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम तो मेरे नैनो के नूर हो, तुम मेरे सिर का ताज हो, तुम मेरे जो है इस तरह के बाबा, मतलब अपने को नशा चढ़ाना होता है। जैसे लोग पूछते हैं आप अमृत वेले की मतलब क्या करते हो इतना समय, मतलब ये क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत अजीब है। बाबा ने हमें इतना सारा काम दिया हुआ है, इतने सारे सामान दिए, लेकिन हम अपने को जब उसी में बिजी रखेंगे तो ये क्वेश्चन ही नहीं रहता कि हम लोग जो है क्या करते हैं। अगर कोई आधा पौना घंटा से ज्यादा अगर कोई सपोज योग करता है या पांडव वन में रुकता है तो पूछते हैं आप वहां क्या करते हैं, तो समझ नहीं आता ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहे। तो बाबा का इतना काम है हम बच्चों के लिए कि हमको वो समय भी कम लगता है। पहले आप उस समय में अपने लिए जमा करते हैं, फिर दूसरों के लिए, फिर सेवा के लिए, तो इतना सारा रहता है। तो इसलिए जो बाबा ने अलग अलग मतलब कहते हैं ना नींद आती है, तो वो सब चीज से अपने को बचाने के लिए हमको जो है डिफरेंट डिफरेंट अपने तिलक लगाने हैं। जैसे कि बाबा हमें वो तिलक दे रहा है, बाबा हमें वो ताज पहना रहा है, बाबा ने जो हमें जिम्मेवारी का ताज दिया है, सेवा की जिम्मेदारी दी है, और अपने अपने को भी हमें आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी बाबा ने दी है। जो आपके साथी हैं जो और ब्राह्मण आत्माएं हैं आपको उनको भी किसी ना किसी तरह का सहयोग जब आप देते हैं तो बाबा को खुशी होती है और बाबा आपको अलग अलग ताज पहनाता है। और यहाँ तो जो ताज मिलेंगे ही, बाबा ने हमें भविष्य के लिए भी कहा है कि बच्चे मैं आपको जो है डबल सिर ताज बनाता हूँ। बाबा हमें अपना तख्त भी देता है, तो तिलक ताज और तख्त है ये सब, मतलब हमको सिर्फ अपने को जागृत अवस्था में ऐसे जब रहेंगे तो ये सब बातें ही नहीं होंगे कि हमको नींद आ रही है, कि हमको झुटका आ रहा है, कि हम हमारी बुद्धि कहीं भटक रही है। तो ये सब एक अपने को हमको तैयार, मतलब अपने को बिजी रखने के लिए बाबा ने हमें ये सब चीजें बताई है, और वो हम सुबह जब इसका अभ्यास करते हैं तो वो हमको बहुत ही फायदा करता है।
वी से है विधि, विधि से बाबा ने कहा कि वृद्धि, विधि से वृद्धि होगी। अगर हम विधि पूर्वक कार्य करते हैं तो जरूर सफलता मिलनी है, वृद्धि मिलनी होनी ही है। और दूसरा एक है कि विधि से सिद्धि, हम सुनते आते हैं साकार मुरली में भी विधि से सिद्धि। तो कौन सी विधि है और कौन सी सिद्धि है? तो इतना कम समय है, कम समय में अगर आपको ज्यादा प्राप्त करनी है, प्राप्ति करनी है, तो उसको बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क, है ना, स्मार्ट वर्क करना है हमें, ना कि वही वही बातों को फिर हाँ ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है। स्मार्ट वर्क में हम कहेंगे कि विधि जो बाबा ने सुबह से लेकर रात तक की जो दिनचर्या बताई हुई है, विधि बताई हुई है, उस विधि पर हम चलेंगे तो अमृत वेला हमारा सिद्धि को पाएगा। तो बाबा ने कहा कि विधि पूर्वक रहेंगे तो वृद्धि होगी और सिद्धि को भी पाएंगे। जैसे लौकिक में गायन है कि जो भी विधि पूर्वक पूजाएं होती है, कि जिस दिन जिस इष्ट की इष्ट का जैसे कि वार बना हुआ है, अगर सोमवार है तो क्या करेंगे, सफेद ड्रेस पहनेंगे। अगर कोई देवी का वार है तो उस समय वो लाल वाले कपड़े पहनेंगे। मतलब होती है ये लोगों की भावनाएं और धारणाएं, इतना वो अपने इष्ट से प्यार करते हैं। तो हमें भी बाबा ने कहा है कि चेक करो, अपने आप को चेक करो कि हम कितना विधि पूर्वक उस कार्य को करते हैं। तो विधि से सिद्धि है और विधि से वृद्धि है।
जब हम विधि पूर्वक चलेंगे तो बाबा का हम क्या करेंगे, वर्षे के अधिकारी बनेंगे। और वर्षे के अधिकारी बनने के लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम पहले अपने ऊपर अपने अधिकारी, स्व के अधिकारी बनो। और स्व अधिकारी बनने के लिए फिर बहुत सारे बाबा चीजें बताते हैं कि स्व की हर चीज पर अटेंशन हो, कि अपने जैसे कि हमारा जो हमारी अपनी दिनचर्या है, अपना स्वभाव संस्कार है, हमारे अपने स्वयं की कमी कमजोरियां हैं, तो बाबा कहते हैं कि उसके ऊपर जब आपका अटेंशन रहेगा तो फिर आप क्या कर पाएंगे, बाबा के साथ बिल्कुल वफादार रह पाएंगे। और जब वफादार रहेंगे तो फिर उसके साथ क्या होगा, आप अपने साथ अपने को उस लायक बना पाएंगे कि हम जो है बाबा के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। वर्षा वर्षा मतलब स्वर्ग तो अभी बात की बात है, लेकिन पहले हमें अपने इसी ब्राह्मण लाइफ में हमें जो है अपने को बाबा कहते हैं ना, अभी संगम पर ही आपको सारी प्राप्तियां करनी है। तो जब आप यहाँ अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर करते हैं तो फिर बाबा आपको ऑटोमेटिकली भविष्य का जो हमारा वर्षा है वो हमको प्राप्त बाबा कहते हो जाता है।
इनसे है इमर्ज, अभी इस समय में क्या इमर्ज करना है, कौन सी वो विजुअलाइजेशन है वो हमारे सामने क्लियर होने चाहिए, कौन सा हमारे क्या इमर्ज करना है। एक तो वो अनादि रूप, उसको इमर्ज करना है। वहां से हमें वहां की जो पवित्रता है, शांति है, उसको हमें क्या करना है, इमर्ज करना है। और दूसरा है कि आदि स्वरूप हमारा, कि उसमें हमारे जो दैवी मैनर्स है, दिव्य दैवी गुण है, देवताओं की जो चाल चलन है, उसको हमें इमर्ज करना है। फिर क्या इमर्ज करना है, उन भक्त आत्माओं को इमर्ज करना है कि जो हमें पुकार रही है, शिव बाबा को पुकार रही है, उनको जो उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है कि उनको सामने इमर्ज करके, उनको देख करके, उनकी जो मांगे है वो हमको पूर्ण करनी है। तो हमें क्या क्या इमर्ज करना है? पहले तो हमें हमारा अनादि रूप इमर्ज करना है, फिर आदि रूप इमर्ज करना है, और फिर वो जो भक्त आत्माएं हैं उनको इमर्ज करके क्या करना है? सकाश देना है। और क्या इमर्ज करना है? धर्मराज को इमर्ज करना है। हाँ, अगर धर्मराज को इमर्ज करेंगे तो जरूर डर रहेगा, लेकिन डर डर के रोज रोज नहीं मरना है, छोड़ो ना। हाँ, अमृत वाला डरना नहीं है। हाँ, शाम को जब हम पोता मिल देते हैं ना, तब धर्मराज को बोले। हाँ नहीं, रात में हम धर्मराज को इमर्ज करेंगे। हाँ, धर्मराज अपने आप इमर्ज कर लेता है। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, फिर वो जाके बैठ जाएंगे बाबा के कमरे में, बाबा 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 बाबा, तो वो फिर अपने आप जो ट्रेन है वो पटरी पर आ ही जाती है। अगला,
अपने को इवेल्युएट करना, अपने को एम्पावर करना, अपने को मतलब हम बाबा ने जो भी हमको कार्य दिए हुए हैं, या हम अपने लिए अपनी चेकिंग करें अपने को, हमने कि हमने अभी तक ब्राह्मण बनने के बाद क्या क्या पाया है और क्या अभी पाना बाकी है। वैसे तो बाबा कहते हैं कि बाबा को हमने पाया तो सब कुछ पा लिया, लेकिन सिर्फ ये कहने से ही मतलब आपको देखना है कि रियली में हमने क्या पाया है। तो पाना था सो पा लिया, वो तो हो गया, लेकिन आप एक एक जो गुण शक्तियां वो रियल में आपने आपके पास है क्या? आपके जो बाबा कहते हैं ये शस्त्र है, जब समय आता है तो क्या ये आपके पास है? या आपको जैसे कहते हैं कि आप पूरे दिन ऐसे चलो तो आप क्या वैसे चल रहे है? तो इस तरह की चीजें इसके अंदर बाबा बताते
हैं। एल से लवलीन, तो इसमें बाबा ने कहा कि जो कहावत है लौकिक में कहते हैं कि ये क्या हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। तो बाबा ने कहा कि इस कहावत गलत है, इसमें एक शब्द ही नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? लव शब्द नहीं है। तो बाबा ने कहा ये कहावत ऐसी होनी चाहिए कि परमात्म प्यार में लवलीन हो गए। तो बाबा ने कहा कि ये महावीर बच्चों की निशानियां है, महारथी बच्चों की निशानी है लव में लीन होना। फिर बाबा ने आगे एग्जांपल दिया कि जैसे नदिया है, नदिया सागर में समा जाती है, लीन हो जाती। लव लीन माना बाबा ने कहा कि एक तो आपको क्या इस स्टेज को प्राप्त करने के लिए, एक तो आपको बाबा के सामने आना पड़ेगा, बाबा के सम्मुख आकर के बैठना पड़ेगा। सामने आएंगे तो समान बन जाएंगे, बाबा के जो गुण है शक्तियां है वो हम में भरती जाएंगी और समा जाएंगे, लव में लीन होंगे।
जब आपकी बाबा कहते हैं कि लवलीन अवस्था हो जाती है तो फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें बाबा ने, सबको पता है कि बाबा ने हमें हमारा लक्ष्य क्या दिया है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को अपने अंदर हमें धारण करना है, और उसके बाद तभी जो भाग्य विधाता बाप है वो हमारा भाग्य बनाने आए हैं। तो वो सिर्फ हमारा भविष्य का नहीं, हमारा वर्तमान समय जो हमारा बाबा ने भाग्य बनाया है दुनिया में, किसी का भी बाबा कहते हैं ना पद्मा पद्म भाग्यशाली आप हो, तो ये भाग्य हमें बाबा से प्राप्त होता है। और उसकी जब हम गुणगान करते हैं, महिमा करते हैं कि भाग्य विधाता बाप हमारी पालना कर रहे हैं, हमें जो है हर तरह से भरपूर करते हैं, तो फिर इस तरह से बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे तुम अपने भविष्य को लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ही जब हम सुबह के टाइम पे ये सब चीजें अपने को ध्यान दिलाएंगे, रोज ध्यान दिलाएंगे, तो हम जरूर वहां तक बाबा कहते हैं आपको प्राप्त हुआ ही पड़ा है।
अच्छा, ओम शांति। 16 तो हो गए।
हाँ, तो नाम शब्द है
नहीं,
हाँ 16 हो गए।
नहीं, उसमें आप उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये तो बाबा कहते हैं कि आप इसमें अटेंशन और भी जो आप अटेंशन रखना चाहे वो रख सकते। अटेंशन मतलब आप जैसे कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ ये तो हमने सिर्फ आपको इस तरह से बताया है, लेकिन आप खुद सब जानते हैं कि हमें अपने ऊपर क्या अटेंशन रखना है।
एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार रिवाइज करते हैं। अ से आज्ञा,
बाप अमृत वेले बाप दादा की जो शिक्षाएं थी,
फिर है मर्यादा,
फिर
है रमणीकता, फिर है इम्पोर्टेंस,
आत्म अभिमान मतलब अमृत वेले जो बाबा की शिक्षाएं हैं उसमें आत्म अभिमानी स्थिति, हाँ जी,
इम्पोर्टेंस, और फिर टाइम टेबल, फिर विधि से सिद्धि। आई से आपने क्या बोला?
इनोवेटिव आइडियाज सुबह के टाइम पे, इंस्पिरेशंस और मिलन।
ई से इमर्ज, और एल से लवलीन,
लवलीन लक लक्ष्य,
और
टाइम टेबल तिलक ताश तक,
विधि वर्षा। अच्छा, ओम शांति,
ओम शांति।